एक राइटर हैं अल कुशायरी, उनकी किताब है अर रिसाला। उसमें लिखते हैं कि उजलत पसंदी का तरीका ये है कि लोगों को तकलीफ़ ना देने का ख्याल करें, इसके बरक्स नहीं, क्योंकि पहली बात में तवाज़ो और नफ्स की इनकिसारी है, जबकि दूसरी में आदमी का एक दूसरे पर बढ़ जाना है जो मुतकब्बिरीन की अलामत है। यानी ये कहना कि हम तो किसी को मिलते ही नहीं, हम तो किसी को इस काबिल नहीं समझते क्या मिले, तो ये नापसंदीदा बात है। और इसी तरह इन दोनों मामलात में अफरात और तफरीत में लोग अमूमन मुब्तला होते हैं, दरमियान में बहुत कम लोग रहते हैं, ये भी सच है। यानी मिलेंगे तो इतना कि कभी घर पे नहीं टिकेंगे, और घर से ना निकले तो घर के हो गए, बीच का रास्ता रखिए। एक इंतहा यह है कि लोगों को बिल्कुल छोड़ दे, हत्ता कि जुमा और जमात ईद और इज्तमा से भी दूर रहें, ये भी गलत है। दूसरी इंतहा यह है कि लोगों से इतना मिला हो कि लहव लाएब और कीलो काल और वक्त ज़ाया करने में शरीक रहे, ये भी दुरुस्त नहीं। इतदाल की बात यह है कि जो जमाती इबादतें हैं इनमें और तावन अलल बिर्र व तक्वा और सवाब के कामों में लोगों के साथ रहे, और ऐसे मौके पर जहाँ अल्लाह से एराज़ हो और फजूल मुबाहत, मुबाहत कह के वो चीज़ें जो जायज़ तो हैं लेकिन ना गुनाह ना सवाब, इनमें मशगूलियत हो, इनसे दूर रहे। और अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बात कही, वकज़ालिका जालनाकुम उम्मतं वसता, हमने आपको बीच की उम्मत रखा तो क्या पता चला कि तफरीह कीजिए, घूमने फिरने जाइए, ज़िंदगी में फ़न हो, खुशी हो, ज़िंदगी आसान होगी। और आप देखिए जिन लोगों को ना खाने का शौक़ ना पहनने का शौक़, वो सख्त हो जाते हैं, बोरिंग, अपने घर वालों के साथ पता नहीं वो कैसे वक्त गुजारते हैं, या उनके घर वाले बेचारे पता नहीं कितने दुखी रहते हैं। तो हल्के फुल्के रहिए, कभी घूमिए, कभी घर में रहिए, कभी अच्छे कपड़े पहने, कभी आम पहने, कभी 10 साल पुराना पहन ले, कभी नया पहन ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या सीखा, मुस्बत तफरीक के कुछ असरात हैं। यानी असल में ये कि तफरीक के नाम पर पॉजिटिविटी हो। अब ये नहीं कि घूमने गए तो बिरयानी का पतीला हाथ में पकड़ा हुआ है और घूम रहे हैं और फिर रहे हैं और चीज़ें उठा उठा के बेवकूफ़ बन रहे हैं, ऐसा भी ना करें। हल्के फुल्के अंदाज से तफरीक करें, तो चाहे अब रोज़ घूमने निकल दें, क्या मिलता है इससे, 6 चीज़ें नोट कीजिएगा। यानी जब बंदा घूम फिर के आता है, खुश रहता है, रिलैक्स रहता है, हंसी मजाक है, जैसे अल्लाह के नबी मुस्कुराते भी थे और सब कुछ, तो शगुफ्ता मिजाजी होती है, बहुत रिलैक्सिंग माइंड होता है वो बंदा, तकल्लुफ से परहेज़ करता है, फिर उमदा अखलाक और उसमें नरमी होती है, मुबालगे और लफ्ज़ से इंसान बच जाता है, लुत्फ़ व मज़ाक का मौका होता है तफरीक के दौरान, और बयान में इख्तसार था अल्लाह के नबी के। तो क्या पता चला कि हल्के फुल्के रहिए। बस लोगों ने दीन को इतना बोझल, बोरिंग और सख्त बना दिया कि लोग इसलिए भी करीब नहीं आते दीन के कि कहीं हम भी बोरिंग ना हो। क्या सीखा, हर काम एतदाल से करना है, तवज्जो की हालत में बंदगी और मेहनत करनी है, बेहजूरी की हालत में आराम और तफरीह। यानी जब तवज्जो हो, दिल बहुत मायल है, तो इबादत और बंदगी उस वक्त कीजिए, और जब दिल बिल्कुल बोर हो रहा है, बेहजूरी का मतलब पता है क्या, कि दिल ना लगे, थके हुए हैं, बहुत बीमार हैं, उलझे हुए हैं, छोड़ दीजिए सब, जाइए आराम कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नयापन पैदा होगा इंशाल्लाह। और इसी तरह से इस्लाम फितरत का दीन है, फितरी तरीके पर रहेंगे तो बात ज़्यादा समझ आएगी। छोटा सा एक वक्फ़ा लीजिए, सोचिए अभी तक क्या किया, उसका खुलासा करें। आप जितना सोचेंगे ना, आपको एक बात यकीनी तौर पे समझ आएगी, और वो क्या, कि अल्लाह ने आपको ख़रीद लिया है। कैसे, उबादा बिन सामत से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, क्योंकि वह जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला गम और फ़िक्र को दूर कर देता है। गम और फ़िक्र को दूर करने में जिहाद की तासीर वजदान से मालूम होती है। वजदान कहते पा लेना, वजदा से, यानी जब बंदा ये पाता है फिर ही पता चलता है। क्योंकि जब नफ्स पर बातिल की यलगार, यानी हर तरफ बातिल का हमला है और इस्तेला हो जाएगा, तो रंजो फ़िक्र भी बढ़ जाएंगे, खौफ और परेशानी भी बढ़ेगी। जब अल्लाह की खातिर बातिल से जिहाद करेगा, तो अल्लाह ताला इस रंज और खुशी को खुशियों, नशात और कुव्वत से बदल देगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इनसे क़िताल करो, अल्लाह इन्हें तुम्हारे हाथों से अजाब देगा, इनको रुस्वा करेगा, इनके ऊपर तुम्हारी मदद करेगा, ईमान वालों के सीने ठंडे करेगा और दिलों के गुस्से को दूर करेगा। अल्लाह अकबर, सूरह तौबा की आयत नंबर 14 एंड 15 है। पता क्या चला कि दिल की घबराहट, तड़प और हुज़न को जिहाद से ज़्यादा कोई चीज़ दूर नहीं कर सकती। लिख लें, अगर आपको डिप्रेशन के ज़रा से भी साइंस हैं, एंग्जाइटी है, एंग्स है, क्या करें, अल्लाह के रास्ते की जद्दोजहद कीजिए। जिहाद में अल्लाह ही से मदद मांगी जाएगी। एक तो वैसे ही बहल जाएंगे, ज़िंदगी का बड़ा मकसद आएगा, दूसरा वहाँ दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह मेरा स्ट्रेस ख़त्म कर दे, मेरा डिप्रेशन ख़त्म कर दे, तो अल्लाह अपने रास्ते में निकले वो की मदद करता ही है। आँख में तिनका पड़े तो मैं आँख की पुतली बंद कर लेता हूँ बकौर शायर, और सब्र का सफ़ेद कपड़ा पहन लेता हूँ। तंगी में अल्लाह को पुकारता हूँ तो तंगी दूर हो जाती है। कितने लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह को पुकारें तो रास्ते भी खुल जाते हैं। सोचिए क्या सीखा, ज़रा सा गौर किया। आयत याद आ रही है कोई कुरान पाक की? जी, सूरह तौबा 111, 111। इन अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक्तुलून व युक्तलून। हकीकत यह कि अल्लाह ने मोमिनों से इनके नफ्स और इनके माल जन्नत के बदले ख़रीद लिए हैं। अल्लाह की राह में लड़ते और मारते और मरते हैं। तो अल्लाह हमें अपने रास्तों में खपा ले। अपने लिए दुआ कीजिए, ख्वाहिश कीजिए, तमन्ना कीजिए, इरादा कीजिए कि अल्लाह मैंने आपके रास्तों में खपना है। और देखिएगा, जो आप चुपके से भी नेकियां करते हैं ना, इरादे भी करेंगे ना, अल्लाह को पता लग जाता है। किसी को पता लगे कि ना लगे, अल्लाह को पता लग जाता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला पर अपनी चीज़ों को डाले, फिर देखिए तो सही होता क्या आपके साथ। आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। कभी आपने किसी को तन्हाई में मुस्कुराते देखा हो, समझ आया करें ये क्यों मुस्कुरा रहा है, इसने कोई अल्लाह से खुशी पा ली है। और यकीन कीजिए कि ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ने आपको मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया, अगर हम अल्लाह के बंदे बन गए। फिर अगली टिप लीजिए, मलकूत का मुशाहिदा कीजिए। मलकूत के आसमान और उसके अंदर की सारी चीज़ें, जो दुनिया में कायनात में फैली हुई चीज़ें, उनकी तरफ इशारा है कि नफ्स को राहत और दिल को आराम देने वाली एक चीज़ ये भी है कि आसमानों और ज़मीनों में कुदरत के आसारों निशानियों का मुशाहिदा किया जाए। अल्लाह की मखलूकात की शादाबी से आँख ठंडी की जाए। दरख्त, तालाब, नहर, नशेबो फराज, ज़मीन व आसमान, रात दिन, चांद और सूरज, हर चीज़ में कुदरत के जलवे बिखरे पड़े हैं। इनके मुशाहदे से लुत्फ़ मिलेगा, ईमान और यकीन में इजाफा होगा। कहा कि ऐ उलुल अबसार, इबरत हासिल करो, यानी आँखों वालों इबरत करो। एक मुसलमान हो जाने वाले फ़लसफ़ी ने कहा था, मुझे जब भी कुदरत के सिलसिले में शक व शुबा पैदा होता है, कभी कभी हो सकता है, फ़िलासफ़र्स को तो बहुत ही होता है क्योंकि उन्होंने हर चीज़ फ़लसफ़े पे परखनी होती है, मैं किताबे कायनात को देखने लगता हूँ जिसमें इजाज़ से पुर अछूते हरूफ हैं। इनसे मेरे ईमान में इजाफा होता है। यानी कभी अल्लाह की कुदरत या अल्लाह की हस्ती के बारे में शक हो ना, तो ज़रा फूल पत्ते सूरज चाँद सितारों को तो देखिए, बादलों को देखिए, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। यकीन करें आपको ये सब चीज़ें अल्लाह का आर्ट वर्क दिखेंगी, अल्लाह ताला का खूबसूरत सा मामला दिखेगा। तो क्या सीखा कि मलाकूत का मुशाहिदा कीजिए। तजुर्बा बताता है कि इसके बाद आपको अल्लाह की कुर्बत महसूस होगी। फिर आप देखिए कि नफ्स की राहत के असबाब देखे हमने, मसा आसमान की वसअतें हैं, ज़मीन में मौजूद नबातात के रंग हैं, बहता हुआ पानी और इसमें मौजूद मखलूक जिसको सी वर्ड कहते हैं, और दिन और रात का आना जाना मौसमों की तब्दीली का बायस है। ये सब कुछ क्या बताता है कि कायनात पे गौर कीजिए। किसी ने कितनी अच्छी बात कही, खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक में उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। अंदर की आँख खुली हो ना, फिर मज़ा आता है। और सूरह बकरा की आयत 164, जिसको आयतुल आयात कहते हैं, यानी बहुत सारी आयतों या निशानियों, साइंस वाली एक आयत, सात निशानियाँ इस एक आयत में, कि नफी खल किस समावाती वलर दिवख्तिलाफ लई वन नहार, के बेशक आसमान और ज़मीन में, आप देखिए कि रात और दिन का बदलना, समंदरों में कश्तियों का चलना जो लोगों को नफ़ा दे, फिर आसमान से बारिश का बरसना, फिर ज़िंदगी मुर्दा होती है, यानी ज़मीन बिल्कुल बंजर होके ऑटम में सब ख़त्म होता है, फिर दोबारा ज़िंदा होती है, फिर जानवर फैलाए, हवाएं बदलती हैं, बादल हैं, ये सब कुछ ज़मीन आसमान के बीच में क्या है, लायात लि कौमी याकिलून। तो इनको देखने से अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी। इस्तराब और बेचैनी से बचने के कुछ अवामिल, हर काम को एक मुनासिब वक्त पे कीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, यानी औकाते कार सेट करें, काम चाहे थोड़ा करें लेकिन मुस्तकिल कीजिए, मुस्तकिल काम कीजिए, इसमें आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। फिर वक्फों में काम करें ताकि उकताहट ना हो, और इंशाअल्लाह ताला आप जितना ज़्यादा अपने काम को एंजॉय करेंगे उतनी थकन कम से कम होगी। फिर इसी तरह वक्त की पाबंदी का हुक्म किधर है, सूरत निसा 103, यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ है, सूरत हूत 114 114, और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के औकात में, और रात की चंद घड़ियों में नमाज पढ़ा करो, और फिर सूरत नूर आयत 58, तीन वक्तों में इजाज़त हासिल करनी चाहिए, नमाज फजर से पहले, जोहर के वक्त जबकि कपड़े हल्के कर लेते हो, और इशा की नमाज के बाद। ये तीनों वक्त तुम्हारे पर्दे यानी तुम्हारी खलवत के हैं। तो औकाते कार बहुत ही अहम हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीज़ें लेते हैं अपने फ़ायदे की खातिर। नेक्स्ट टिप क्या है, ज़हनी इंतशार का शिकार ना हो, क्योंकि जब आपका जहन मुंतशिर हो जाएगा ना, तो बिल्कुल वो एक बिखरी हुई ऐसी तस्वीर की तरह होगा कि चाहे उसमें कितने ही दाने हों लेकिन वो दाने ऐसे एक से नीचे दूसरे पे गिरते रहेंगे कि आप उसको संभाल नहीं सकेंगे। तो बात भी ये बहुत सच्ची है, कितने ही लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते। इमाम शौकानी लिखते हैं कि एक आलिम ने मुझे नसीहत करते हुए कहा कि तसनीफ़ व तालीफ़ मत छोड़ना, यानी लिखना पढ़ना ना छोड़ो कभी, चाहे दिन में दो ही सतरें लिखो, चाहे दो लाइनें ही लिखो। मैंने इनकी नसीहत पर अमल किया और उसका समरा पाया। इसी हदीस का यही मफहूम है जिसमें कहा गया, बेहतरीन अमल वो है जो बराबर किया जाए चाहे थोड़ा हो। यानी अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह को क्या पसंद है अमल, फरमाया कि अदवमुहा व इन कल्ला। इसी तरह पुरानी कहावत है कि कतरा कतरिया दरिया मी शवत, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। क्या नहीं देखते कि ज़्यादा देर तक रगड़ने से रस्सी भी पत्थर पर असरअंदाज होती है, यानी रस्सी भी बिलाकर टूट जाती है। हमारे इस इज़्तिराब और बेचैनी का एक सबब यह है कि हम हर चीज़ को यकबारगी कर डालना चाहते हैं जी, ये बहुत बड़ी वजह है। ओवरवेम हो जाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, अभी करना है, सब कुछ करना है, फिर कर नहीं पाते तो क्या होता है, फिर उकता कर इसे छोड़ बैठते हैं। अगर हम बतदरीज काम करें और इसे मराहल में तकसीम कर लें तो सब सुकून से हो जाए। नमाज की मिसाल लीजिए कि शरा ने इसे पांच अलग औकात में रखा है ताकि बंदा तंजीमे औकात यानी मुराजे के अपने कामों को सही तरीके से मैनेज करे, टाइम मैनेज करे और शौक़ के साथ नमाज़ पढ़े। अगर एक ही वक्त में सारी नमाज़ें होती तो आदमी उकता जाता। हदीस में आया कि जड़ से काट देने वाला ना पीठ बाकी रखता है ना ज़मीन क़ता करता है। मुराद क्या है कि जड़ न रहे तो कुछ भी कायम नहीं रहता। तजिए से ये मालूम हुआ कि जो आदमी वक्फों में काम करे तो इसका जज्बा और जोश भी बरकरार रहता है और वो इसे इसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर तौर पर करता है जो यकबारगी करना चाहिए। बाज़ उलमा कहते हैं कि नमाज़ें भी तंजीम औकात का बड़ा ज़रिया हैं, जैसा कि फरमाया कि नमाज मोमिनीन पर मुतय्यना वक्त में फ़र्ज़ है। तो अगर बंदा अपने दुनियावी और दीनी कामों को हर नमाज के बाद तकसीम कर ले तो इसके वक्त में वसअत पैदा होगी। इसे एक मिसाल से समझिए, एक तालिब इल्म अगर फजर के बाद किसी भी फ़न की किताब हिफ्ज़ करने के लिए, जोहर के बाद आम मुताले के लिए, के असर के बाद दकीक, दकीक कहते हैं गहरा यानी जिसमें गौर व फिक्र करना हो इल्मी बहस के लिए, और मगरब के बाद को मुलाकात और गुफ्तगू के लिए, और ईशा के बाद को असरी किताबें, असरी होती है दौरे हाजिर यानी अखबार है कोई ऐसी चीज़ जो मतलब डे टू डे कह लीजिए, मकालात और तहकीकात यानी रिसर्चिस के मुताले, और घर वालों के साथ बैठने के लिए ख़ास करें तो इसके लिए बेहतर होगा। अक्लमंद वो है जो बसीरत से इस्तफादा कर ले। अगर तुम अल्लाह का तक्वा इख्तियार करोगे तो वो तुम्हें फुरकान अता करेगा। यानी सारी बात से क्या पता चला कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, यानी ये बहुत ही अहम बात है जो भी हमने देख ली कि कैसे कामों को सही तरीके से करने से इंसान फ्रेश हो जाता है, इंसान के अंदर एक अजीब खूबसूरती आती है। तो क्या सीखा फिर इससे आपने कि अपने आप को रिलैक्स रखा करें, काम करें, फिर वक्फा, फिर गैप, फिर रिलैक्स, छोटे छोटे नैप्स ले लें, बीच में एक छोटी सी चीज़, एक टॉफ़ी खा ली, एक खजूर खा ली, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि फिर आप अपने काम को इंजॉय करेंगे और आप उससे उकताएंगे भी नहीं। देखिए, काम को बड़ा टालने वाला तो नहीं है ना कि जान छुड़ानी है, तो इंजॉय करते हुए करिए। जैसे सफ़र करें, बहुत लंबा भी बैठे तो थक जाता है इंसान, बेहतर है हर 1-1.5 घंटे बाद 5-6 मिनट का स्टॉप ले लीजिए। हल्के से बाहर आए, स्ट्रेच किया, कुछ चाय ले ली, थोड़ा सा इधर उधर देख लिया, फिर बैठ के फिर फ्रेश हो जाएंगे। तो अल्लाह करे कि हम अपने इस पढ़ने में भी इसी टिप को लें। अब तो किताब तकमील की तरफ आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इतना लंबा सफ़र था और इतना खूबसूरती से गुजर गया, पता भी ना चला। जब बुक के पेज गिनती थी तो परेशान होती थी, अल्लाह कैसे पढ़ाऊँगी। वैसे बताना बहुत आसान लगता है अपने लफ्ज़ों में, लेकिन जब लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना होता है ना, उसमें वक्त भी लगता है, फिर उसमें बाज़ दफ़ा बोरियत भी होने लगती है। लेकिन देख लीजिए कि हमने 90% अपनी बुक पढ़ ली है। दुआ कीजिए कि अल्लाह आखिरी हिस्सा भी हमसे बेहतरीन तरीके से करवाए। तो नेक्स्ट टिप क्या है? ज़हनी इंतशार का शिकार ना हो। क्यों? इसलिए कि जहन को प्रागंदी और कदूरत का शिकार सबसे ज़्यादा इसकी जहनी अनारकी बनाती है। अब ये इतनी मुश्किल उर्दू कौन समझे? हाँ, समझ आ रही है आपको? मतलब ये कि जहन बहुत उलझा हो, उसमें एक ख्याल आ रहा है, एक जा रहा है, किसी के लिए कदूरत है, नफ़रत है, तो वो जहन ऐसे ही होता है जैसे बाजार में कोई मंडी में कोई फ्रूट बिक रहा है। मुराद ये कि जहन को सादा रखे, हल्का रखे, रिलैक्स रखे। बाज़ लोग इसके बीमार होते हैं, यानी बाज़ लोग ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, वो अपनी सलाहियतों की हदबंदी नहीं कर पाते, ना इनकी फ़िक्र और नज़र मरबूत है, यानी उसमें रब्त नहीं होता, बेरब्त बातें होती हैं उनकी। आप देखिए, कोई ड्राइविंग करे और कभी स्पीड तेज़ करे, कभी हल्की करे, इधर मोड़े उधर मोड़े, तो जो बीच बैठे होते हैं वो भी नहीं मुतमईन होते। इसी तरह याद रखिए कि हमारी सोचें भी बाज़ दफ़ा बड़ी डिसबैलेंस होती है, इम्बैलेंस हो जाता है इंसान बाज़ दफ़ा अपनी इन गलत सोचों की वजह से। और वजह यह है कि मार्फत की बहुत सी किस्में और राहें हैं, इसके रास्तों और तरीकों की हदबंदी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि इंसान एक ख़ास नुक्ता नज़र का हामिल हो कि इनफरादियत मतलूब है। जहन को परागंदगी और रंज देने वाली एक चीज़ क़र्ज़, मुआशी ज़िम्मेदारियाँ और माली मसाइल हैं। इस सिलसिले में हम चंद असूल बयान करते हैं। पहला ये कि जो मियाना रवि बरतेगा, इन्फाक बेहतर तौर पर करेगा, ज़रूरत और हाजत में ही माल लगाएगा, फजूल खर्ची और इसराफ से बचेगा तो अल्लाह की मदद पाएगा। फरमाए, फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं। जो लोग खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं ना तंगी, बल्कि एतदाल का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो क्या सीखा? एतदाल रखना इंशाल्लाह। दूसरा असूल यह कि माल मुबाह ज़रिए से कमाया जाए, कभी भी हराम, नाजायज़, मशकूक तक भी तरीका नहीं होना चाहिए, उससे भी दिल पर बोझ आता है। हराम ज़रिए इख्तियार ना किए जाएं, क्योंकि अल्लाह तैयब है, तैयब ही को कबूल करता है, और हराम कमाई में वो बरकत नहीं देता। अगरचे तुझे कसरत खुब्स यानी खबीस, नापाक चीज़ वगैरह पसंद भी आए, यानी ज़्यादा पाने के शौक़ में नापाक ना ले लो। तीसरा सुलझे कि माल हलाल की तलब हो, यानी माल हलाल की तलब हो और कोशिश हो हलाल तरीके से जमा किया जाए, बेकारी और बेअमली छोड़ दी जाए, छोटी और बेकार बातों में वक्त ज़ाया न किया जाए। देखिए कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फरमाते हैं, मुझे बाज़ार का रास्ता बताओ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नबी के पास हैं और कहते हैं कि मुझे बाज़ार दल्लूनी इला सूक, कि मैं जाकर तिजारत करूं, कुछ खरीदूं बेचूं, तो उसी में अल्लाह मुझे बरकत देगा। जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो क्या सीखा? कि जहनी इंतशार का शिकार नहीं होना, जहन को कभी डिस्टर्ब ना होने दें। देखिए, बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो बुखार हो जाता है, शुगर लेवल ऊपर नीचे हो तो आप सिक फील करते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो तो भी आप ड्रॉजी हो जाते हैं। तो जहन अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपका पूरे जिस्म का बैलेंस ख़राब होगा। सवाल लिखिए कि जहनी इंतशार क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या हैं? पहली बात है मुआशरती और मुआशी मसाइल। बहुत सारे लोगों के फैमिली इश्यूज़ होते हैं, घर में किसी एक से नहीं बनती, कभी शौहर बीवी में नहीं बनती, माँ बच्चों में नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। फिर इसी तरह माशी मसाइल, माशी मसाइल क्या है कि इकोनॉमिकल डिसऑर्डर है, पूरी नहीं पड़ रही और इस तरह की चीज़ें। फिर लंबी बीमारियां, बाज़ दफ़ा इंसान थक जाता है, बोझल हो जाता है, कहता है आखिर कब तक। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उसी को राज़ी रखिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ी वजह है ज़हनी इंतशार की। खूबसूरत औरतों को देखकर लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, मर्दों को अपनी बीवियां अच्छी नहीं लगती, हर चमकती नपकती चीज़ देखकर बच्चे उसको लेने की ख्वाहिश करते हैं। यानी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे जहनों पे सोशल मीडिया का। फिर कर्ज, कर्ज़ों में लोग डूबे होते हैं बिला वजह के कर्ज़ से। माशी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, यानी कह लीजिए कि अपने सर पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा डाल ली, आमदन इतनी नहीं थी। फिर घरेलू उलझने और मसाइल भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। इम्तिहान में नाकामी, इलाज क्या है? मुझे तो डिप्रेशन ए टू जी याद आ रहा है जो हमने पूरा कोर्स किया था, तो नोट कीजिए, मेरा नाम रवि रखिए। याद रखिए किसी भी काम, इवन दीन के नाम पर भी हद पे ना आगे जाइए, थोड़े दिन बाद आप थक जाएंगे, बोझ उठा उठा कर फिरेंगे तो आपकी गर्दन मुड़ जाएगी। मेरा नाम रवि बरतें, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करें, फजूल खर्ची से और इसराफ से बचें, क्योंकि फजूल खर्च तो शैतान के भाई हैं, सूरह बनी इसराइल आयत 27। फिर दूसरी चीज़ लीजिए कि तय्यब और हलाल रिस्क का एहतमाम कीजिए, इससे इंशाल्लाह आपका जहन नहीं बिखरेगा। मुबाह माल और हलाल ज़रिए से कमाएं, हराम ज़रिए ना इस्तेमाल करें, हलाल और तय्यब खाएं। और अल्लाह कहते हैं लोगों, ज़मीन में जितनी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें, इन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर ना चलो। फिर इसी तरह तीसरी चीज़ नोट करें, बेकारी छोड़ दें, खाली बैठना, कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप, उधर बैठकर अजीबो गरीब चीज़ें वो बनता रहता है और आपको दुखी करता है। करें क्या, हलाल कमाई के लिए दौड़ धूप कीजिए। अलकासिबु हबीबुल्ला, बाजार लोग कहते हैं लो जी ये माल के पीछे भागते हैं, नहीं, अपने बच्चों को खिलाना है, अपने अल्लाह के रस्तों पे लगाना है। कितने तो इंसान दीन के प्रोजेक्ट्स रखता है और उसके ऊपर खर्च करता है, अगर माल नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करेंगे। फिर बेकारी और बेअमली छोड़ दीजिए, बेकार बातों में वक्त ज़ाया ना कीजिए। और अल्लाह ताला का इरशाद, साबिकविला मगफिरत में रब्बिकुम वजन्ना वजन्नत नर्दुहा कर्दिस समाई वल अर्थ वइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ो, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई की तरह, वो इन लोगों के लिए तैयार की गई जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ये अल्लाह का फजल है, वो इसे इसको देता है जिसे चाहता है, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। तो ये सब करके देखिए, अल्लाह बरकत देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ईमान और अखलाक सबसे गिरां कदर है। क्या पता चला, गिरां कदर किसको कहते हैं? कीमती, बहुत प्राइसलेस हैं ये। वो गरीब फ़कीर था, पुराने चीथड़े तन पर डाले हुए, भूखा पेट पाँव नंगे, इसका नसब भी मालूम ना था, ना माल ना मनसब ना ख़ानदान, कोई घर नहीं जिसमें आराम करता, ना कोई असासा यानी फर्नीचर, कोई बिलोंगिंग्स, अपनी हथेलियों से आम कुओं से पानी पी लेता, मस्जिद में सो जाता, हाथ तकिया होता और पथरीली ज़मीन बिस्तर, लेकिन साथ ही वो अल्लाह का जिक्र करता, किताब इलाही की तिलावत ज़ुबान पर रहती, नमाज और जिहाद पे सफ़े अव्वल में नज़र आता। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस जवान का गुज़र हुआ, आपने आवाज़ देकर पुकारा, जलबीब तुम शादी नहीं करोगे? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कौन शादी करेगा, मेरे पास न मालो जाह हो मनसब। एक बार फिर गुज़र हुआ तो आपने अपना सवाल दोहराया, उन्होंने भी वही जवाब दिया। फिर तीसरी बार भी यही सवाल जवाब हुआ, आपने फरमाया, जलबीब तुम फलां अंसारी के पास जाओ, इन्हें मेरा सलाम कहो और कहना कि रसूलुल्लाह चाहते हैं कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। वो अंसारी एक ऊंचे घराने के थे, जलबीब इनके घर पहुँचे और रसूलुल्लाह का पैगाम अर्ज़ किया। अंसारी बोले, रसूलुल्लाह को सलाम अर्ज़ है, लेकिन तुम्हारे पास ना माल ना मनसब, मैं कैसे अपनी बेटी तुमको ब्याह दूँ? कोई भी बेटी वाला यही सोचेगा अमूमन। इनकी बीवी भी सुन लेती हैं, वो भी यही बात कहती हैं कि मालो मनसब कुछ तो हो, और इनकी मोमिना बेटी भी सुनती है और माँ बाप से कहती है कि आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए को लौटाएंगे? नहीं, खुदा की कसम नहीं। चुनाचे ये शादी हो जाती है, खैराबाद होता है, बरकत होती है, औलाद होती है, खुशनुदी है रब की असास पर गुजर बसर होने लगती है कि अचानक जिहाद के लिए मुनादी पुकारता है, यानी पुकार लगी कि जिहाद पे जाना है। जल्दी फौरन घर से जिहाद के लिए निकल खड़े होते हैं, 7 काफिरों को जहन्नुम रसीद करके शहीद हो जाते हैं। अल्लाह रसूल और अपने मिशन के लिए बखुशी जान की कुर्बानी देते हैं। जंग के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्तूलीन की खोज करते हैं, यानी ज़ख्मियों को और शहीदों को निकाला जाता था कि कोई इधर उधर ना हो। लोग शहीदों का नाम लेकर आपको सुनाते हैं और इस गुफ्तगू में जलबीब को फरामोश कर देते हैं, यानी मशहूर लोग जो मरे उनकी लोग बातें शुरू करें और जलबीब का तذکرہ ही ना करें क्योंकि वो मशहूर आदमी ना थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें भूलते नहीं, बल्कि भीड़ भाड़ में भी इनका नाम याद रखते हैं और फरमाते हैं, अरे भाई, मैं जलबीब के बारे में मालूम कर रहा हूँ। फिर इन्हें मिट्टी में पड़ा पाते हैं तो इनके चेहरे से गर्दो गुबार हटाते और फरमाते हैं, तुम 7 को मारकर शहीद हुए हो, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। यह जलबीब के लिए बहुत बड़ा इनाम और सरमाया इफ्तिखार था। जलबीब की कीमत इनका ईमान और अल्लाह के रसूल की इनसे मोहब्बत थी, यानी दुनियावी तौर पे तो उनके पास कोई चीज़ें ही नहीं थी जिससे उनकी कीमत लगती। वो मिशन था जिसके लिए उन्होंने जान फिदा की। इनकी गुर्बत, फ़क्र और ख़ानदान की कमी ने इनको इस शर्फ़ अज़ीम और बुलंद मर्तबे से पीछे नहीं रखा। उन्होंने दुनिया आखरत में ही शहादत, रज़ा, कबूलियत और सआदत पाली। अल्लाह ने इनको जो फजीलत दी इस पर मसरूर हैं, और इनके जो खिलाफ़ हैं इस पर वो खुश हैं कि इन्हें ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। आपकी कीमत तो आपके बुलंद कारनामे और बेहतरीन सिफात है। आपकी खुशबख्ती यह है कि शिया की मार्फत हो, वो जो अपनी कदरों कीमत जान ले वो ऐसा ही अमल करे मुबारक है, वो जो अपने नफ्स को बुलंदी, जिहाद और नेक नामी की रहनुमाई करे मुबारक है, वो दुनिया और आखरत दोनों में कामयाब हो कामरान हुआ। क्या पता चला कि एक गरीब बुलवतन कह लीजिए और एक हबशी शख्स काले रंग का, ना माल ना कोई बहुत कुछ, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसकी कितनी तारीफ़ की। तो असल बात क्या है फिर? ईमान और अखलाक सबसे कीमती हैं, इनको बढ़ाइए, आपकी बड़ी इज्जत होगी दुनिया में। और ईमान क्या है? अल्लाह पे भरोसा। इस्तलाही मानी क्या है? कौलो इकरार, अमल, कल्ब और ज़ुबान से इकरार और दिल ज़ुबान और अज़ा से इस पर अमल करना। अमल सवाल है क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी से करना, नीयत अच्छी होना, तरीका रसूल का हो। सूरह यूनुस आयत 9 में भी आता है, यकीनन जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए, इनका रब इनको इनके ईमान के सबब इनके मकसद तक पहुंचा देगा, नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। हमसे क्या मतलूब है? अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाइए, ईमान के साथ नेक अमल करें और सहाबा की सीरत से सबक हासिल करें। अल्लाह हमें इन तकाज़ों को निभाने वाला बना दे। और सूरत निसा 162 में ईमान की बात है, ला के निर राज से खून अफिल इल्म से लेकर बात शुरू होती है और आखिर में बात जाती है वल मोमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनूतीहिम अजरन अजीमा। अल्लाह अकबर, के अन करीब अल्लाह ताला इनको बड़े बड़े अजर देगा। तो ईमान बढ़ाइए, कल आपकी मेरी कीमत भी इस ईमान के साथ होगी।